اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جیسا کہ ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے مہمان ہوں گے ریجن کے ممبر قاسم نذیر اور اگلی دفعہ جو آنے والے اس نومبر میں الیکشن ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے وہ اسپیس کینڈیڈیٹ بھی ہیں ریجن کے ممبر کے لیے آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کی کیا پوزیشن ہے اور آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے جو الیکشن آنے والے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح کی تیاریاں کی ہوئی ہیں پابندیاں اٹھنے جا رہی ہیں یا سخت ہونے کے لیے جا رہی ہیں مزید ٹائٹ ہوں گی یا نرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامعین آج آپ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور بھی کوئی بات ہوئی ٹائم ہوا ہمارے پاس ان کے پاس تو تھوڑا سا اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے قاسم ایک بار پھر ہم آپ کو ادھر آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی اور سامعین جو سن رہے ہیں ان کو بھی
قاسم میں نے چھوٹی سی تمیز باندھی ہے سب سے پہلے تو چونکہ ہمارا یہ موضوع ہوتا ہے کرونا وائرس اور آپ تو اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سسٹم چلانے والوں میں جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں بھی ہمارے سامعین کو بتائیں یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ شیئر تو پہلے کریں
جی بہت بہت سب سے پہلے تو انکل جی میں آپ کا جناب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ریڈیو میں بلایا اور اسپیشلی اس طرح کے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے فوکس ڈالا ہوا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کرونا وائرس کے بارے میں بار بار بات کریں کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بھی کہ اب نئی تازہ کیا ہے ان چیزوں میں تو میں سب سے پہلے آپ کا اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ فوکس ڈالا ہے اور جیسے پوری دنیا بھی یہ جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ڈنمارک آ سکتا اور آئے گا تو اتنی دیر تک رہے گا بھی لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں تو اس بیماری کے ساتھ رہنا پڑے گا کئی سالوں تک کیونکہ یہ فی الحال بیماری جانے والی نہیں ہے تو اس سے ہم نے بچ بچا کے رہنا ہے لیکن جو سب سے اچھی خبر جو نہیں آئی ہے اس بیماری کے دوران وہ یہ ہے کہ اب ٹیکے لگانا ہم نے شروع کر دیے ہیں تو دسمبر کے اینڈ میں ہی ہم نے ٹیکے لگانا شروع کر دیے تھے تو اب تک تقریباً جو ہیں فیم ہونا چوسن سٹیزنس کو تقریباً ٹیکے لگ چکے ہیں ایک لگ چکے ہیں یا دونوں بھی لگ چکے ہیں اور ساتھ میں شروع میں پہلے صرف ایک دوائی ہم نے اپروو کی تھی پھر دوسری بھی ہوگی تو اب تیسری بھی ہوگی یہ دوائی جو ایسٹرازینیکا کی ہے تو وہ بھی ہم نے لگانا اب شروع کر دیا ہے اسی طرح جب یہ ٹیکوں کا پروگرام شروع کرنا تھا تو ہم نے گروپ بنائے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح پہلے آسان طریقے سے ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک 12 اسٹیپس کا گروپ بنایا جہاں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں جو فلائی پولیو میں رہتے ہیں پھر جو سیفیمتھس اوک سے کی عمر سے زیادہ ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے اسپیشلی وہ لوگ جن کو گھر میں ہیلپ ملتی ہے تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے 12 اسٹیپس کے ہم نے کیے ہیں جہاں 65 کے عمر سے جو زیادہ بڑے ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے فوکس آنا چاہیے تو یہ 12 اسٹیپ میں سے تقریباً 5 جو ہیں پہلے 5 وہ تقریباً مکمل ہونے والے ہیں مطلب کہ اتنی تیزی سے اب یہ جا رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی پرابلمس بڑھ رہی ہیں کہ لوگ ٹائم سے آتے نہیں ہیں یا تو پھر بالکل نہیں آتے جب انہوں نے یہ ٹیکے لگوانے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو فائزر کا ٹیکہ لگنا ہے یا آپ کو موڈرنا کا ٹیکہ لگنا ہے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیکے سنبھالنا بہت مشکل ہوتے ہیں اس کو تقریباً 80 ڈگریز -80 ڈگریز میں رکھا جاتا ہے پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے پھر ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے اس کے اندر لگانا پڑتا ہے تو جب لوگ نہیں آتے اپنا ٹیکہ لگانے بے شک انہوں نے اپنا ٹائم بک کیا ہوا ہے تو ٹیکے یہ ہمیں پھینکنے پڑتے ہیں اور پہلے ہی ہمیں کمی ہو رہی ہے ان ٹیکوں کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ ٹائم سے آئیں اور ادھر میں کسی خاص فوکس یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غیر ملکی ہیں یا نہیں میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ڈینش بھی نہیں مطلب کہ سٹیزن جنرلی نہیں ٹائم سے آتے اور یہ شروع میں ہم نے اس وقت بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ جب لوگ ٹائم بک کرتے تھے کہ انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرانا ہے تو بہت سارے لوگ نہیں آتے تھے دن میں میرا خیال تقریباً جہاں تک انہوں نے کہا تھا 800 کے لگ بھگ کے تقریباً لوگ نہیں آتے تھے ٹیسٹ کرانے کے لیے تو یہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور اب نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ ٹائم سے آئیں جو ایک چیز جو ہم نے ریجن میں ہمیں جو محسوس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ جو ہوٹی کوئک ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں جہاں وہ ناک کے اندر سے پورا پیچھے گلے تک ٹیسٹ لیتے ہیں وہ لوگوں کو بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا तो अब हमने एक नया टेस्ट शुरू किया है। बुध वाले दिन से हमने ये ऑर्डर दे दिया था कि सारे चेस्ट जो हैं, जो होटी चेस्ट करते हैं, कि वो अपना चेंज करें। और चेंज इस तरीके से हुआ है कि अब जब आपका नाक का टेस्ट होगा तो नाक के कोने कोने में सिर्फ आपका टेस्ट लेंगे, मतलब दोनों नाक के जो सुराख हैं उसमें से वो टेस्ट लेंगे और सिर्फ नाक के कोने तक, अंदर तक नहीं जाएंगे, और जवाब आपको उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ हमने अब शुरू की है इस हफ्ते से, वो ये है कि जो फेमस है कि साल से उम्र बड़े हैं, जब उनका टाइम वैक्सीन का आएगा तो वो खमून से राबता करके अपने घर में अब टीके लगवा सकते हैं। तो और घर में जब टीके लगवाएंगे तो उनको जो जो नया टीका जो अप्रूव किया गया है एस्ट्राज़ेनेका का, उनको वो लगाया जाएगा। और उसकी वजह ये है कि इसको संभालना बहुत ज़्यादा आसान है, इसे -80 डिग्रीज में नहीं रखा जाता, तो फिर उनको ये घर में टीके लगाए जाएंगे, जो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत आसानी हो जाएगी हमारे बुजुर्गों के लिए भी, कि वो खुद ही टाइम बिस्तेल कर सकते हैं, घर आएंगे, आपको टीका लगाया जाएगा, आपने कुछ पैसे नहीं देने, कोई कुछ नहीं करना, आप आराम से इजी होके ये कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी कोशिशें रीजन की तरफ से कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसान हो, इस कोरोना टाइम में टेस्ट करना आसान हो, और साथ में जो उनको टीके लगेंगे उसमें भी इतने उनको क्या कहते हैं परेशानियां ना हो। तो ये काफी अच्छे तरीके से काम चल रहा है। फिर कुछ ये भी है कि लोग जो होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं कि हमें जो ये टीका लगेगा तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे। और उधर मैं यही कहूंगा कि इसके जो इफेक्ट जो अब तक जाने गए हैं वो वही इफेक्ट होते हैं जो अब आपको इन्फ्लुएंजा का टीका लगता है। थकावट हो सकती है, सर में दर्द हो सकते हैं, मसल में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, उल्टियां आ जाती हैं, ये आम सी जो रिएक्शन होती हैं ये आती हैं। और इससे मैं ये कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई होते हैं जिनको होते हैं, लेकिन कोई डेंजरस साइड इफेक्ट अभी तक नहीं नजर आया। फिर कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि कासम, जो फाइजर का टीका है हमने सुना कि वो एस्ट्राज़ेनेका से बेहतर है, और उधर ये है कि ये फैक्चुअल जो बात है ये अप्रूव नहीं हुई कि इस तरह है कि नहीं। खास जो फर्क है इनमें वो ये है कि जो फाइजर और मोडर्ना के जो टीके हैं ये छोटों पे भी, यंगस्टर पे भी इस्तेमाल किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, बूढ़ों पे भी किए गए हैं, हमारे हम उम्र के भी किए गए हैं, लेकिन जो एस्ट्राज़ेनेका के हैं वो इतने ज्यादा बूढ़ों पे नहीं किए गए। तो उस वजह से लोग थोड़े घबरा जाते हैं कि जी इन्होंने इतने टेस्ट बूढ़ों पे नहीं किए, बुजुर्गों पे नहीं किए, तो क्या कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इधर ये बहुत जरूरी है कहना कि इंग्लैंड ने सिर्फ एस्ट्राज़ेनेका के टीके लगाए हैं, उन्होंने सबसे पहले इनसे ही राबता किया था और उन्होंने अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट के बारे में खबर नहीं बताई। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जल्द से जल्द लोगों को जब टाइम मिले वो अपने टीके का टाइम ऑर्डर करें, जाएं, लगवाएं, और इंशाल्लाह ताकि हम सब जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकें। जी
कासम, आपने बड़ा अच्छा किया, तफसील से बताया। तो कासम, जो जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा लोगों को। आपने तादाद भी बताई कि 5 लाख के करीब लोगों को जो है वो लग चुके हैं, और लगता है कि ये मई जून में जो है ये सारा सिस्टम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो डेनमार्क की वज़ीरे आज़म जो हैं वो भी इसराइल गई हुई थी, तो वो भी कुछ मीडिया पे खबरें चली, तो आप हमारे सामने के साथ शेयर करेंगे।
हाँ जी बिल्कुल करूंगा। उसकी वजह ये है कि जब दवाइयाँ अप्रूव होती हैं तो वो यूरोप के जो मेडिसिन जो यूनियन है वो आपको अप्रूव करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो मोशन में जा रहा है, क्योंकि कंपनियां कहती हैं कि हमने सिर्फ डेनमार्क को दवाइयाँ सप्लाई नहीं करनी, हमने बाकी के यूरोपियन के जो ममालिक है उनको भी सप्लाई करनी है। डेनमार्क यूरोप में से वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, तो बाकी के जो मुल्क है वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ एक दूसरे के चलें, ताकि जब एक दूसरे के हमने ट्रेवल में करना होगा, गायसा करना होगा, तो सारे को इम्यून हो, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी मिल जाए, तो हम सारे यूरोप के जो ममालिक है वो इम्यून हो। सिर्फ अगर डेनमार्क इम्यून होगा तो वो कोई खास फायदा नहीं होगा इनका। तो उसकी वजह से तो मेडिसिन जो कंपनियां हैं वो इतने टीके नहीं भेज रही हमें जितने हम चाहते हैं। आपने ये देखना है कि डेनमार्क ने इतने टीके ऑर्डर किए हुए हैं कि कम से कम हर बंदे के लिए 3 या 4 टीके हों। इसराइल ने सबसे पहले ये टीके का काम शुरू किया था, अपने अवाम को लगाने का जो काम इन्होंने शुरू किया था, और उधर इन्होंने तकरीबन 10-11 डोज हर बंदे के लिए रखे हुए हैं। तो अब उनको ये प्रॉब्लम पड़ रही है कि अगर डोज ज्यादा देर तक पड़े रहेंगे तो वो ओवरडेट हो जाएंगे, तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम ये बेच दें। तो इसलिए मेरे फर्क चाहती है कि हम इसराइल के साथ किस तरह कोऑपरेट करें उनसे ये वाली दवाइयां भी खरीद सकें, लेकिन साथ में एक फंड भी वो बनाना चाहती है जहां बीमारियों के ऊपर रिसर्च की जाए और ताकि एक दवाई भी बनाई जाए इनकी अपनी, जो डेनमार्क की हो, इसराइल की हो और इसराइल की हो। और अब सोचने वाली बात ये है, पहली बात तो ये है कि ये इसराइल की है। इसराइल वो मुल्क है जिसने फलस्तीनियों को बड़े जोर से पकड़ा हुआ है। वो कहती है कि जो इसराइल है ये माहिर हैं वायरस मेजता हैं वैक्सीना में, लेकिन ये तो वायरस मेजता हैं ह्यूमन राइट वायलेशन करने में भी, दवार बनाने में भी, लोगों के ऊपर जुल्म करने पे भी, तो उस चीजों पर क्यों नहीं फोकस आता। FN ने कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि फलस्तीनियों को भी टीके देने चाहिए, लेकिन इन्होंने अब तक सिर्फ 2000 टीके दिए हैं फलस्तीनियों को, और सिर्फ उनको दिए हैं जिनके पास इसराइली पासपोर्ट है फलस्तीन में, बाकियों को इन्होंने नहीं दिए। जो रशिया ने वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक, वो फलस्तीन ने ऑर्डर की थी कि हम अपने वाम को लगाना चाहते हैं, मेरे ख्याल तकरीबन 4 या 5 हजार था, वो इसराइल ने फलस्तीन के अंदर आने ही नहीं दिए, बाहर रोक के रखा। फिर बाहर से जब इंटरनेशनल प्रेशर आया फिर जाके उनको ये टीके मिले। ऊपर से हमें ये भी देखना चाहिए कि फलस्तीन एक आम सा मुल्क नहीं है जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या कोई और मुल्क, अमीर सा मुल्क जहाँ बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक इसराइल ने उनको इस तरह पकड़ा हुआ है। तो ये एक चीज है कि इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जो मैंने अपने फेसबुक में भी लिखा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, हजारों लोगों के पास ये मैसेज भी गया और लोगों ने बहुत पसंद किया कि ये बिल्कुल सही है कि ये गलत है। और दूसरी जो सोचने वाली बात है जिस पे मैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये मतलब कि गवर्नमेंट सोई हुई है, वो ये है कि कहते हैं कि वैक्सीना में मेजता है, लेकिन इसराइल ने तो एक भी टीका नहीं बनाया, उन्होंने एक भी COVID-19 की मेडिसिन नहीं बनाई, उन्होंने तो सिर्फ सबसे पहले अपनी अवाम को टीके लगवाए हैं। मतलब कि उन्होंने एक काम किया है जो बहुत सारे मुल्क ही कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई टीका नहीं बनाया, उन्होंने कोई दवाई नहीं बनाई, तो ये किस चीज में माहिर हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने इनके साथ मिलकर रिसर्च करनी है ताकि हम कर सकें, क्योंकि इसराइल वो मुल्क भी है जिसने सबसे पहले अपने मुल्क को आस्ता आस्ता खोलना शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उनको लोगों अवाम को टीके लगवाए हैं, उनको एक डिजिटल COVID-19 पासपोर्ट दिया है, अगर वो सिनेमा जाना चाहते हैं तो वो पासपोर्ट दिखा सकते हैं कि हमें टीका लग चुका है इसलिए हम अंदर आ सकते हैं, वो जिम भी जा सकते हैं, स्विमिंग जा सकते हैं, मतलब जिन लोगों को टीके लग गए हैं वो पासपोर्ट दिखा के जो मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस वजह से वो इसराइल गई है कि हमने इसराइल और डेनमार्क ने, तीनों मुल्कों ने मिलकर साथ में काम करना है। और जाहिर है यूरोपियन यूनियन वो भी नाराज हैं, गुस्से हैं कि हम यूरोप में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये कैसे हो गया कि आप यूरोप से निकल के, बल्कि निकल के नहीं, हमारे साथ भी काम कर रहे हैं लेकिन साथ में इसराइल के साथ भी काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर काफी नेगेटिविटी आई है, बहुत सारी पार्टियां तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन चंद पार्टियां हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। तो ये जो है इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ हुआ है वो इस वजह से हुआ हुआ है। लेकिन मेरे फर्गसन जो स्टेट मिनिस्टर हमारी है, वो इसराइल के साथ कोई चीज अभी अप्रूव नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर वो हाँ ना कर दे, जब तक ये बिल ना पास हो जाए। तो अब ये दूसरा उसने करना है, जो बिल पास करेगी फिर जाके फुली कम्प्लीटली ये इसराइल के साथ एक ऑपरेट हो सकता है।
कासम, समझ रहे थे हम लोग या लोग समझ रहे थे कि ये जो वैक्सीन है जो खरीदने जा रही हैं डेनमार्क की वज़ीर आज़म साहिबा, जो हमारी वज़ीर आज़म है, कि ये इसराइल ने दवाई बनाई है।
नहीं, ये इसराइल ने, बिल्कुल इसराइल ने कोई दवाई नहीं बनाई। इसराइल के पास फाइजर की दवाई है। जब क्या कहते हैं ये दवाइयां बनी थी तो इसराइल ने सारे मुल्कों से सबसे ज्यादा कहा था, हम पैसे देंगे आपको, हमें सबसे पहले आप दवाई दें, बहुत सारी दवाई दें। इस वजह से फाइजर कंपनी ने सबसे पहले इनको दवाई दे दी और बहुत ज्यादा दवाई दी, ये सही वजह है, इसलिए इनके पास दवाइयां बहुत सारी आई हुई हैं।
कासम, आते हैं अब इलेक्शन की तरफ भी, हम यहाँ की भी बात करते हैं। अब नवम्बर में जो है वो इलेक्शन होंगे, कम्यून के होंगे और रीजन के होंगे। आपने देखा कि जब सिकंदर इलेक्शन लड़े तो उन्होंने वक्त से बहुत पहले अपनी कम्पेन का आगाज़ कर दिया, और आपने भी जो है अपना अच्छे वक्त में अपनी जो है कम्पेन का आगाज़ किया। दूसरी खबरें यह भी आती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि 2-3 महीने जो है या महीना डेढ़ जो है اس وقت اپنی کمپین کا آغاز کرنا چاہیے؟ آپ ایز اے سیاستدان اور ایک ایز اے ووٹر بھی آپ بتائیں، چونکہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ ووٹر بھی تو ہیں نا کسی کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے کمپین شروع کرنی چاہیے کیا، بہت پہلے یا اچھے وقت میں شروع کرنی چاہیے؟ آپ تو جب ختم ہوتے ہیں الیکشن، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ اپنا کام آپ جاری رکھتے ہیں؟
میں اس میں یہ کہوں گا کہ جتنی جلدی انسان کام شروع کر سکتا ہے اتنا ہی بہتر ہے. میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں ریجن کا، تو میں یہ کہوں گا کہ میرا کام جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب میں الیکٹڈ ممبر ہو گیا تھا. اس وقت میرا ٹیسٹ ایک طریقے کا شروع ہو گیا تھا کہ میں نے اب اپنے ساتھیوں کو دکھانا ہے کہ انہوں نے جو مجھے ووٹ دیے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک بتاتا ہے اینڈ میں جا کے کہ آپ پاس ہوئے ہیں کہ آپ نہیں ہوئے. تو الحمدللہ دیکھیں، جیسے کہ میں چیئرمین بھی ہوں ایک کمیٹی کا، ہم بہت سارے بل پاس کر رہے ہیں، میرے بہت سارے آرٹیکل انٹرویوز اپنے پاکستانی ریڈیو میں آتے ہیں، ڈینس ریڈیو میں آتے ہیں، ٹی وی میں آتے ہیں، جہاں نظر آتا ہے کہ میرا کام کیا ہو رہا ہے. تو میری جو کمپین ہے وہ ایسے ہے کہ میری کمپین ہے جہاں میں اپنے آنے والے الیکشن کے بارے میں بات بتاتا ہوں، ساتھ میں میں اپنے رزلٹ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور جو کام کر رہا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہوتی ہیں یہ ایک کمپین کی طرح شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ساتھی بھائی بہنیں بزرگ جو ہیں ابھی سے میرا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ قاسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ایک بہت اچھے طریقے سے اپنی یہ جو ریجن کی جو کرسی آپ نے سنبھالی ہے، بہت سارے اچھے بل پاس آپ نے کیے ہیں، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوا ہے. اسپیشلی یہ جو COVID-19 جو آیا اس میں تو لوگوں کو صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے، جس بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح بچنا ہے، کیا ہو رہا ہے، جتنی نئی انفارمیشن آ رہی ہیں وہ میری طرف سے آ رہی ہیں اور باقی جو ساتھی ان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. لیکن ایز الیکٹڈ ممبر میں نے بہت ضروری سمجھا ہے کہ میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں، ان کو کسی طرح غول ہی کروں تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں، ڈرے نہ. اور مساجد کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، فینگا کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ڈینس سپورٹس جو فینگ ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اسکولوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو الحمدللہ بہت ایک اچھے طریقے سے میری کمپین چل رہی ہے، آنے والے الیکشن کی بھی، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کی بھی.
قاسم، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس وقت آپ کی پارٹی کی نئی فورمین بھی آ گئی ہیں، تو کیا پارٹی پوزیشن کیا آپ لوگوں کی؟
جی ظاہر ہے جب ایک نئی فورمین آتی ہے اور جو اسپیشلی جب لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں پہلے سے، کیونکہ جو ہماری جو فرانسسکو غوسن کی لجائی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی سب سے پرانی ممبر ہے السینٹ، 2014 میں وہ بھی تھی، 2015 میں اس نے فالکے سنگھ کا الیکشن بھی لڑا تھا، آج وہ میئر ہے کوپن ہیگن کی، کلچوا پومستا ہے، اور بہت اچھی جانی پہچانی شخصیت ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے تو اس میں ایک بوسٹ آتا ہے پارٹی کے اندر، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور جس طرح جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوپن ہیگن میں ہماری کرسیاں نکلتی ہیں کھمون میں، اور اس کی وجہ سے پھر ریجن میں بھی ہماری ایک کرسی نکلتی ہے، اور میں تو یہی چاہوں گا کہ جو کرسی نکلے گی انشاءاللہ وہ مجھے ہی ملے، جس طرح پچھلی بار بھی مجھے پہلے نمبر میں ملی تھی. تو اس طرح دیکھا جائے تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری پوزیشن جا رہی ہے، ریجن میں ہمارا اسپیشلی ایک منڈیٹ نکل رہا ہے.
قاسم، پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ ایک ہی پارٹی میں آپ کے دو کینڈیڈیٹ تھے، بڑا ٹف وقت تھا، اور آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، جس کے جو ہے اثرات، جس کے وہ آپ نے وہ سیاسی فیصلہ آپ کا اچھا تھا، جس کا فائدہ آپ کو اس ریجن کے الیکشن میں ہوگا. ایم آئی رائٹ؟
انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اچھا ہی ہوگا.
قاسم، اس کے علاوہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ کرونا وائرس کی جو ہے یہ وقت انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، لوگوں کو ویکسین لگے گی. اسی طرح فن لینڈ میں یا بھی سویڈن میں جو آ رہی خبریں آ رہی ہیں کہ سویڈن میں بھی جو ہیں وہ کتوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے فل فور جو ہے وہ سونگ لیں گے تو آپ کا ٹیسٹ ہو جائے کرے گا، وہ بھی بالکل فری ہوگا. اس پر آپ کچھ کہیں گے؟
سوری، سویڈن میں کیا ہو رہا ہے؟
سویڈن میں کتوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جو دو تین مہینے لگ جائیں گے، وہ باقاعدہ آپ کو سونگ کے جو آپ کا ٹیسٹ کے بارے میں، پازیٹیو نیگیٹو کے بارے میں بتا دیں گے.
میں نے آنیسٹلی انگلی میں نے اس طرح کوئی نہیں سنا کہ کتے سونگ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو نیگیٹو ہے.
جس طرح یہ جو آپ ایئرپورٹس پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو جب وہ سونگتے ہیں جو ناکٹکس کے بارے میں، جس طرح وہ کتے تیار کیے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے ان کو سونگنے میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ تیاریاں سویڈن میں ہو رہی ہیں.
वो स्वीडन में, अगर उनको देखें, स्वीडन ने अपने तरीके से ही हर चीज़ की है। वो कहते हैं कि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है, कोई कहते हैं नहीं फ़ायदा हुआ, डेथ बहुत सारी हुई हैं। मैं तो यही जनाब कहूँगा कि हमारा एक बहुत अच्छा एक तरतीब हमने बनाई हुई है अच्छे तरीके से, कि हमने एक टेस्ट कराना है। अगर एयरपोर्ट में किसी ने पाकिस्तान जाना होता है या किसी भी मुल्क जाना होता है, तो उन्होंने एक PCR टेस्ट अपना लेके जाना होता है जो नेगेटिव हो। सोनस डॉक टीके में उन्होंने एक पासपोर्ट, COVID-19 पासपोर्ट प्रिंट करना है जहाँ लिखा होगा कि ये नेगेटिव है, फिर वो जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान से जब आना होगा टेस्ट कराना होता है। अगर आपकी कोई ट्रांसफर मिलम लर्निंग है तो उधर आपको एक होटी टेस्ट दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने ये चलाया हुआ है, हमने किसी जानवरों का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करना। ऊपर से ये भी नजर आया है कि जानवरों को भी COVID-19 हो सकता है, तो हमने इस चीज के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं है कि जानवरों को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इधर इंसानों ने काम करना है, इंसान इंसान के साथ ही बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमने इसी तरीके से काम करना है।
कासम, ये सफरी सहूलियात में जो है इसको आसानियां बनाई जाएं, को तेज़ी से टेस्ट होकर, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, जिन लोगों को पता होता है या जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या कंप्यूटर में या इन चीज़ों को हर वक्त फॉलो करते रहते हैं। मैं एक आम शहरी की बात कर रहा हूँ, जो बहुत सारे, मैं अपने आम गोज़ की बात कर रहा हूँ, कि उन्हें पता नहीं होता, अगर अचानक जाना पड़ जाता है तो उसमें जो शराइत होती हैं सफरी, जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, तो बड़ी मुश्किल होती हैं। कहीं वो प्राइवेट ढूंढ रहे होते हैं, कहीं फॉर्म ढूंढ भाग रहे होते हैं, कोई हिले गोज भाग रहा होता है, कोई कहीं भाग रहा होता है। तो इसमें जो है मज़ीद, अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि मज़ीद आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, बाज़ लोग तो इसको बिज़नेस बना लेते हैं।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अंकल जी, ये जनाब, ये जो है ना COVID-19, ये है ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक बीमारी। हमने अपनी तरफ से बहुत आसान करने की कोशिश की है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको सिर्फ दो वेबसाइट से मिलती है, एक कोरोना मीटे फोक्समती को, दूसरा है सोनहल डॉट डी के। और मैं इतना इसको आसान तरीके से आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपने एक PCR टेस्ट लेना है। PCR टेस्ट जो है वो होता है जहाँ वो आपका गले से टेस्ट लेते हैं और आपको एक दिन या 2 दिन के अंदर पता चल जाता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। इसका टेस्ट अगर आपने जब अगर आपने जुमेरात को ट्रैवल करना है तो मंगल वाले दिन आप लें, क्योंकि ये 24 आवर तक अकाउंट करता है। तो आप ये टेस्ट लें, साथ में आप सोनहल डॉट डी के में जहाँ आपको इसका जवाब मिलता है उधर ही आप कोरोना पासपोर्ट बटन दबा के प्रिंट कर सकते हैं, उसमें लिखा होगा कि ये नेगेटिव है। तो यही डॉक्यूमेंट आपने लेके जाना है। और मैं यही कहूंगा कि जिस तरह आप प्रिंट अपनी टिकट करते हैं उसी तरीके से आपने इसको प्रिंट करना है, अपने टिकट के साथ रखें, तो इनशाला आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं जैसे कि अगर आपने पाकिस्तान से अगर डनमार्क आना है एयरपोर्ट में, वो आपका टेस्ट लेते हैं, कहते हैं कि जी आप तो पॉजिटिव हैं, फिर आपको वो ट्रेवल करने नहीं देंगे। मेरे दोस्त हैं, वो 3 भाई हैं, वो पाकिस्तान गए हुए थे। एक भाई ने 4 दिन पहले आना था, उसने टेस्ट कराया, वो नेगेटिव था, लेकिन जब वो डनमार्क पहुंचा उसने दोबारा टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। उसके जो दूसरे 2 भाई थे उन्होंने 4 दिन बाद आना था, उन्होंने जब एयरपोर्ट गए तो उन्होंने टेस्ट कराया तो वो उधर ही पॉजिटिव थे, उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली। तो इस तरह की मुझे पता है कि प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका काम काज है, आप छुट्टी करके पाकिस्तान जाते हैं, तो आपको कम से कम 5 दिन का गैप रखना पड़ेगा कि अगर आपको पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए तो आप क्या करेंगे। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कोई लोग जाते हैं लेकिन वो फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, घर नहीं आ सकते, फिर जो उनकी जॉब होती है वो चली जाती है। क्योंकि बहुत सारे जो आबस फैसा हैं उन्होंने अपने जो आप आ रहा है उनको कहा हुआ है कि पूरा नक्शा लाल है, अब कोई सीकिंग सेल्स कैब आपको तेगा नहीं कर रही, अगर आप फंस गए तो आप फंस गए। तो अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं और आपको बाहर के मुल्क रहना पड़ेगा क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए, तो आप काम से निकाले जाएंगे। ये मूविया जो है, जो बस ड्राइवर्स हैं उनको भी ये कहा गया था शुरू में कि अगर आपने ट्रैवल किया आप पॉजिटिव हैं आप फंस जाएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ख्याल रखना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिजनेस ना बन जाए, लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला हुआ है और दूसरे मुल्कों ने भी कहा हुआ है कि अगर आपने हमारे मुल्क आना है तो आपने एक टेस्ट दिखाना है कि आप नेगेटिव है। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह का बिजनेस नहीं है, ये है कोई फॉल्स का इलाज जिसे हम डेनिश में कहते हैं ना, ये इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं ताकि हम अपना
नहीं
भी ख्याल
कासम,
रखें और दूसरों
कानून
का भी।
कायदे की पाबंदी कर ले, हम हुकूमत की बात नहीं करें, कुछ जो प्राइवेट लोगों ने ये सिलसिला शुरू कर लिया है।
जनाब तो ये तो बड़े अफसोस की बात है अगर कोई प्राइवेट इस तरह पैसे छीना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कि आप अपने वेबसाइट में जाके प्रिंट कर लें। मैं तो ये कहूँगा कि बुजुर्ग कोशिश करें कि अगर उनके बच्चे उनके हेल्प कर सकते हैं उनको उनसे मदद मांगे, या अपने पड़ोसी को कहेंगे आप मेरी मदद कर दें कि इसको निकाल लें। साथ में ये भी है कि अगर जो सुन है डॉक्टर के में नहीं जा सकते, वो अपने खमून में भी जाके कह सकते हैं कि जी मुझे ये कोरोना पास चाहिए, तो आप ये प्लीज मुझे प्रिंट करके दे दें, तो उधर से भी आपको हेल्प मिल सकती है। ये बहुत जरूरी है कहना, और लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आपके खून में आपको कोरोना के सिलसिले में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। अगर खुदा ना खास्ते किसी को घर में कोरोना हो गया है और फैमिली ज्यादा रहते हैं घर में, तो फिर आप खून से रब्ता कर सकते हैं। खून आपको होटल देंगे जहाँ आप होटल में रह सकते हैं, और खाना जो होगा वो भी खून ही आपको देगी। उनकी मतलब कि आपने उनसे बात करनी कि आप क्या खा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर खाना मिलेगा। तो आपको इस तरीके से काफी हेल्प मिल सकती है। मैं
कासम,
जो
जल्दी में एक सवाल
जी
मेरे जहन में आ रहा है जो पिछले हफ्ते मुझसे किसी ने पूछा था। चूंकि हम तो बात कर सकते हैं, हम तो कोई इस तरह की हमारे हम तो जहाँ से इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर कर सकते हैं।
बिल्कुल
यहाँ डेनमार्क में डैनशों के बहुत ज़्यादा मकान हैं, स्वीडन में, मालमो में, जहाँ भी उस कोने में या आगे जहाँ स्वीडन इतना बड़ा मुल्क है, तो स्वीडन से तो जो लोग आते हैं, जो स्वीडिश शहरी हैं, वो तो अपना कोरोना का टेस्ट करवा के आते हैं, डेनमार्क एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ डेनमार्क के लोगों को भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो अगर मकान देखना चाहें, चूंकि वो डेनिश शहरी हैं, तो वो उनका भी कोरोना टेस्ट अगर माइनस हो तो उन्हें भी दाखिल होने की, स्वीडन को दाखिल होने की इजाज़त देनी चाहिए।
ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये ऐसे है कि ये इसमें रीजन में किसी का हाथ नहीं है। फॉल्केथिंग में जो लोग बैठे हैं वो भी कोई खास प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये स्वीडन की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हमने कैसे क्या करना है। तो ये जो भी इसका हल निकाल सकते हैं वो स्वीडन वाले खुद ही
तो फिर
निकाल
डेनिश
सकते हैं।
गवर्नमेंट ने भी तो इजाज़त दी हुई है स्वीडन वालों को।
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए जो डेनिश गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, और इसका हल कैसे निकाल सकते हैं ये गवर्नमेंट ही बता सकती है।
कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपने हाथ में कोरोना वायरस माइनस पेपर उठाया हुआ है और आपको दाखिल की इजाज़त भी नहीं। चलें, इस पर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।
ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज।
समान, ये थे कासिम नज़ीर जो कि अपनी बात कर रहे थे कोरोना वायरस की। ये एक इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने आपके साथ शेयर की, और उन्होंने आपको ये भी बताया जो वैक्सीन लग रही है उसके बारे में भी बताया। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सारे समझ रहे थे कि ये जो है इसराइल ने तैयार की है वैक्सीन, तो उन्होंने कासिम नज़ीर ने बताया कि नहीं, इसराइल में कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ख़रीद ली है। तो अब डेनमार्क की वज़ीर आज़म भी वहाँ गई थी, तो देखते हैं आने वाले दिनों में। समझ ना, अब डेफिनेट जो है वो कोरोना वायरस जो है इतना जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो डेफिनेट हुकूमतें जो है इस पर हर कोई जो है वो परेशान है। तो कासिम कह रहे थे कि ये लंबा टाइम चलेगा, अब समझ भी आती है ये लंबा टाइम चलेगा। लेकिन समाइन, आखिर में हम आपसे कहेंगे कि आपको एहतियात करनी चाहिए। समाइन, हमें तकरीबन साल से ऊपर हो गया ये प्रोग्राम बनाते हुए। दुनिया में हम समझते हैं बहुत सारे और भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते, और भी लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी जो है वो तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन दुनिया का वाद ये रेडियो है जो हमारा जो अदारा है कि जिसने सबसे ज़्यादा और बहुत लंबे प्रोग्राम जो है इस पर किए,